ओम शांति। आज सायकालीन इस क्लास में हम आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करेंगे। आप पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और उसके बाद आप संपूर्ण रूप से बाबा के इस बेहद यज्ञ में समर्पित हो गए। आप मेडिकल ट्रोमा सेंटर के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। आपको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से आपने MBBS की डिग्री अर्जित की तथा लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज से MD की डिग्री की। आप हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में विशेष आपने उपाधि प्राप्त की है। आप इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की राष्ट्रीय सलाहकार काउंसिल के भी सदस्य हैं तथा भारत में बहुत सी मेडिकल सोसाइटीज एवं एसोसिएशन के आजीवन सदस्य भी हैं। आपको अनेक सम्मान और पदक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिले हैं। इसमें से एक है माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा भी आपको 2008 में पदक प्राप्त हुआ है। और भी बहुत आपने जो सेवाएं विशेष की है तो आपको बहुत सारे पदक अवार्ड्स प्राप्त है और इस प्रकार आपने बहुत अच्छी तरह से बाबा को प्रत्यक्ष किया है। विशेष जो कैड के प्रोग्राम्स चलते हैं आप बहुत सुंदर तरीके से जो भी दिल के मरीज है हार्ट पेशेंट से उनको बहुत अच्छी गाइडेंस देकर उनकी दिल की बीमारी खत्म करते हैं। तो हम आपके लिए कहेंगे दिलाराम के दिल में बसते हैं आप, दिलाराम बाप के दिल में बसते हैं आप, त्याग तपस्या सेवा का सुंदर एग्जाम्पल है आप, पेशेंट को पेशेंस का पाठ पढ़ाते हैं आप, धैर्यता पेशेंट को पेशेंस का पाठ पढ़ाते हैं आप, कैड वालों को भी दिलवाला बनाते हैं आप, दिलवाला बनाते हैं आप और हम सबको भी दिलाराम से जोड़ने के लिए बहुत सुंदर युक्ति पर क्लास कराने आए हैं भाई जी। हम अशरीरी अवस्था द्वारा बाप को सहज रीति से कैसे याद कर सकते हैं अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता जी।
कहाँ का ग्रुप है? ग्रुप कहाँ का है?
कासगंज और तिनसुकिया आसाम।
ओम शांति। अशरीरी स्थिति, हम सभी का लक्ष्य है अशरीरी बनना। अशरीरी का मतलब क्या होता है? अशरीरी का अर्थ क्या है? मैं आत्मा अलग और शरीर अलग, मतलब मैं आत्मा अशरीरी हूं अर्थात मैं आत्मा देह से भिन्न हूं, मैं आत्मा अलग हूं शरीर अलग है। तो यही हमारी अल्टीमेट स्थिति है एक्चुअली। जैसे हमें इस स्थिति के द्वारा ही हम बाप की एक्यूरेट याद कर सकते हैं। हमें विकर्माजीत बनना हो, कर्मातीत बनना हो, इसी रास्ते के द्वारा ही हम विकर्माजीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं, सतोप्रधान बन सकते हैं, जैसे कि बीज रूप अवस्था बना सकते हैं। ये जो है अवस्था सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है ना। तो इसी बात को आज हम गहराई से डिस्कस करेंगे। इस पे आपको भी अपनी, आप सभी बनना चाहते हैं अशरीरी? अशरीरी बनना चाहते हैं? पर अशरीरी बनने के कुछ ही दिनों के बाद वापस घर जाना पड़ेगा। घर तैयार है जाने के लिए? रेडी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए अशरीरी बनने के लिए हमें दो स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहली है देही अभिमानी स्थिति, दूसरी है आत्म अभिमानी स्थिति, तीसरी है अशरीर स्थिति, और अशरीर स्थिति के बाद आती है विधेयी स्थिति, राइट? तो एक्चुअली रिटर्न जर्नी जैसे ना, हमारी जो रिटर्न जर्नी है ना, अभी हम सत्युग में थे पहले, फिर कैस में आए, त्रेता में आए, आठ जन्म लेने के बाद त्रेता में आए, फिर बारह जन्म लिए तो कहां पहुंच गए, द्वापर में पहुंच गए, और द्वापर से बयालीस जन्म मतलब इक्कीस जन्म के बाद हम कलयुग में पहुंच गए, और अभी कलयुग के बयालीस जन्म बीते तो कहां पहुंच गए, संगम पर बीत गए। अब संगम में हमारा लक्ष्य क्या है, अब हमको वापस रिटर्न जर्नी करनी है ना। चौरासी जन्म जो हमने लिए इसमें से पहले तिरसठ जन्म तो हमने पहले बयालीस जन्म लिए वो कलयुग में लिए, उसके बाद हमने 21 जन्म द्वापर में लिए, तो रिटर्न हो गए ना। तो ये जो 42 और 21 जन्म है इसमें हमने क्या किया, क्योंकि हम जैसे ही हम त्रेता के अंत में आए थे तो द्वापर की शुरुआत से ही हमने क्या, हमें हमारे अंदर देहभिमान आ गया, दादा देहभान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आई, और बॉडी कॉन्शियसनेस आते ही देह का आकर्षण पैदा हुआ, अपनी देह की तरफ भी आकर्षित हुए और दूसरों के देह की तरफ भी आकर्षित हुए। तो सबसे पहले काम विकार का जन्म हुआ, काम विकार से फिर हमारे अंदर लोभ आया, मोह आया, और फिर अहंकार आया, उस अहंकार को जब हमने प्राप्त किया उसको तोड़ने के लिए फिर क्या चाहिए, क्रोध आया है ना, ताकि जो हमने इकट्ठा किया, जो हमने सब कुछ हमारे पास जो भी हमने आर्टिफिशियल इकट्ठा किया उसके लिए क्रोध, क्रोध है हमारा सैनिक है ना, मतलब सैनिक काम, रावण का सेनापति कौन है, क्रोध विकार है ना, महामंत्री प्रधानमंत्री कौन है, काम विकार है ना, ठीक है, बाकी तीन उसके और भी साथी है ना, ट्रेजरर कौन है, खजांची कौन है, लोभ है ना, ठीक है, गृह मंत्री कौन है, मोह है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग जो मंत्री है ना, ये अलग अलग मंत्री हैं, तो इस तरह से पांच जो हैं रावण के मुख्य है ना, ये जो विकार हैं। तो हमने इन विकारों के वश होकर के ना, इन विकारों के वश होकर हमने कर्म किए, द्वापर में तो इन विकार मुख्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ज्यादा अंश रहा, किंतु कलयुग में क्या हुआ, ये विकार तो रहे किंतु इनके बाल बच्चे भी आ गए, इनके क्या वंश आ गया, वंश में क्या क्या आ गया, आलस आ गया है ना, हम आलस होने लगे, आलसी होने लगे, अलबेला होता गया, अलबेलापन होता गया, फिर क्या होता गया, दोष दृष्टि बन गई, सब में दोष नजर आने लगे है ना, सबसे बदलने की भावना बढ़ती गई, कलयुग में बहुत बदलने की भावना बढ़ी, फिर क्या हुआ, शक करने लगे आपस में, उससे मानसिक बीमारियां आने लगी, स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, अनुमान लगाने लगे, चिंता बढ़ती गई, भय बढ़ता गया है ना, इनसिक्योरिटी बढ़ती गई, और फिर प्रेशर बढ़ते गए, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, और फिर क्या होता गया उसके बाद, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता गया है ना, फिर छोटे छोटे घर, छोटे छोटे और राज्य बन गए, और छोटे छोटे उनके बीच में और झगड़े भड़े है ना, और बीमारियां आई, फिर इससे और ज्यादा बीमारियां आई, तो अंत होते होते क्या हुआ, हम सब बहुत ही मानसिक तौर से भी रोगी बन गए और शारीरिक तौर से भी रोगी बन गए। अब ऐसे समय में शिव बाबा आया, संगम पे शिव बाबा ब्रह्मा का तन का आधार लेकर के आए, और उन्होंने आकर के फिर हमको कहा, बच्चे अब तुम, हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम देह नहीं तुम आत्मा हो है ना। अब हम ये अभ्यास करते हैं, बाबा की श्रीमद बाबा ने जो हमें राज बताया, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया, राज बताया बाबा ने, बताया बाबा ने बताया ना कि बच्चे तो तुम जो है, ये तो देह तो तुम्हारा ह्यूमन बीइंग है ना, तुम बीइंग हो, बीइंग ह्यूमन ह्यूमन मान ह्यूमस, ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारा शरीर है, और कैसे आत्मा शरीर को चलाती है इसके बारे में बताया, कैसे आत्मा यहां से बैठ के, आत्मा से सात ऊर्जाएं निकल रही है ना, हमेशा सात चैतन्य ऊर्जाएं निकलती रहती है, आत्मिक ऊर्जाएं निकलती हैं, और कैसे वो एक एक सेल को चलाने के लिए, मतलब इवन बुद्धि को भी मन को भी संस्कार, आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां ना, उनको भी चलाने के लिए क्या चाहिए, ये सातों एनर्जी चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान माने सत्य की समझ चाहिए, पवित्रता चाहिए है ना, शांति चाहिए, रूहानी प्यार चाहिए, अतिंद्रिय सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और शक्तियां चाहिए। तो दिमाग की सेल्स कैसे काम करेंगे, दिमाग की सेल्स को क्या काम करना है, दिमाग की सेल्स को क्या काम करना है, कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आती है उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, वो विश्लेषण करने के बाद हमें देखना पड़ता है, जो मेरा परिवार है, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहती हूं, या जहां मैं कम काम करते हैं, क्या वो जो मैं सोचा, जो मैंने विश्लेषण किया, वो मेरे लिए तो अच्छा है कि, तो क्या मेरे घर वालों के लिए अच्छा है, क्या मेरे समाज के लिए अच्छा है, फिर हम ये सोचते हैं, नहीं मेरे समाज के लिए अच्छा, क्या विश्व के लिए अच्छा है, ये भी कहा दिमाग का काम है, दिमाग जो हमारा ना, जो दिमाग है उसका काम एनालाइज करना, और फिर अंत में यह सोचा था ये भी दिमाग के अंदर ये पावर होती है कि वो मैं खुश कैसे रहूं। इन सभी चीजों के लिए समझ चाहिए ना, सत्य की समझ चाहिए, क्या चाहिए, सत्य की समझ चाहिए ना। तो सत्य की समझ तो ये जो है देह पर, देह में रहते हैं हम और देह विमान बहुत बड़ा हुआ है ना, और हमारे पास सत्य की समझ नहीं है। कलयुग कांत होते होते हम कैसे हो गए, हम क्या हो गए, सब बॉडी कॉन्शियस हो गए, बॉडी चलिए दो मिनट बाबा पे। ओम शांति। तो सत्युग में तो आत्मा थी, आत्मा के पास इतनी सात्व एनर्जी थी कि वो आत्मा मन को भी, बुद्धि को भी और संस्कार भी उन सात्व एनर्जी से भरे हुए थे। मैं आत्मा पोषण कर रही थी पूरी तरह से बुद्धि का भी, मन का भी, संस्कारों का भी, और पांचों कर्मेंद्रियां भी, हमारी पांचों आंख, नाक, कान, मुख और रोम रोम, स्किन का जो रोम रोम है उससे सातों गुण दिखाई देते थे, ज्ञान भी, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और शक्तियां, ये हमारे रोम रोम से ना, और शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं से दिखाई देती थी। धीरे धीरे 14 जब हमारे जब त्रेता के अंत त्रेता में आए तो एनर्जी कम हुई, 14 डिग्री रह गया ना, 14 कला रह गए, तो क्या हुआ फिर हमारे अंदर वो एनर्जी थोड़ी कम हो गई और बुद्धि, मन, संस्कार अभी भी आत्मा कंट्रोल में थे। तो स्वराज्य अधिकारी माने स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था किस पर, बुद्धि पर, मन पर, संस्कार माने आदतों पर, हैबिट्स के ऊपर, और पांचों कर्मेंद्रियों पर, आंखों पर भी, नाक कान मुख पर भी, और शरीर के आठों अंगों पर भी राज्य था, फुल कंप्लीट राज्य था। ऐसे ही त्रेता में भी राज्य रहा कि तू जैसे जैसे एनर्जी कम होती जा रही थी द्वापर युग आ गया था, द्वापर युग जैसे द्वापर शुरू हुआ तो आत्मा की एनर्जी कम हो गई। आत्मा की एनर्जी कम हो गई कितनी, वैसे बताया 51 मतलब 100% थी, 80 हुई, 75 हुआ तो त्रेता शुरू हो गया, और फिर 60 हुआ, फिर 50, जैसे 55 हुआ फिर 50 होते ही मतलब बीच का टाइम आ गया है ना, जैसे ही फिर आत्मा की एनर्जी 49% हुई तो क्या हुआ, अब मन की एनर्जी क्या बन गई, मन की एनर्जी कितनी हो गई, 51% हो गई ना, कितनी हो गई 51% ना। पहले सत्युग जैसे कंपनी होती है ना, कॉर्पोरेट होता है ना, कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां शेयर, वहां पर वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जिसके सबसे ज्यादा शेयर होते हैं वो क्या बन जाता है, कंपनी का मालिक बन जाता है, एमडी बन जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। तो पहले त्रेता के अंत तक कौन था एमडी, आत्मा राजा थी, और फिर जैसे ही त्रेता शुरू हुआ, द्वापर शुरू हुआ तो क्या हुआ, मन के शेयर ज्यादा हो गए है ना, मन के 51% शेयर हो गए, तो क्या बन गया, मन राजा बन गया। मन राजा बना तो क्या हुआ, अब आत्मा किसके वश में हो गई, पहले थी आत्मा के वश में मन था, बुद्धि थी, संस्कार थे, पांचों कर्मेंद्रियां थी, अब किसके वश में चले गई, अब आत्मा मन के वश में हो गई, ठीक है, बुद्धि किसके वश में हो गई, मन के वश में, आदतें किसके वश में हो गई, मन के वश में, और हमारे पांचों कर्मेंद्रियां किसके वश में हो गई, आंख नाक कान मुख किसके वश में, मन के वश में, और हमारे शरीर मन के वश में, तो हम क्या बन गए, मनुष्य, क्या बन गए, मनुष्य शब्द कहां से आया, मन के वश में है ना, मन के हवाले है ना, मनुष्य शब्द कहां से आया, मनुष्य माना मन के वश में, मन के हवाले हो गया सब कुछ है ना, मन राजा बन गया है ना। मन का कनेक्शन किससे था, मैं इसलिए बात बता रहा हूं आपको ताकि समझ आए कि हमें क्यों जरूरी है शरीर बनना, नहीं तो क्या होता है, हमें शरीर क्यों बने, देह में रह रहे क्यों शरीर बने, है ना, समझ आने की आवश्यकता है ना, नहीं समझेंगे तो क्या होगा, बच्चा मन हमारा बच्चे के समान है, उसको समझाएंगे नहीं, कन्विंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो नहीं बनता, जाओ क्या कर लोगे, है ना, और मन राजा है तो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते है ना, समझ गया तो फिर क्या कहेगा, फिर कॉपरेट करेगा ना, कॉपरेट करेगा, उसे क्या मिलने वाला, कौन सा खिलौना मिलने वाला, बच्चा है ना, कौन सा बड़ा अच्छा खिलौना मिलने वाला, तो उसको समझ आएगी, हाँ ठीक ठीक चलो मैं साथ देता हूं तुम्हारा, समझना इतना जरूरी है ना, बिना समझे कन्विंस हुए ना मन मानेगा ना बुद्धि मानेगी, संस्कार तो है ही अड़ियल है ना, तो वो बाद में कंट्रोल होंगे ना, है ना। मन बुद्धि समझ जाए तो फिर आगे काम चले ना, क्योंकि उसके बगैर हम राजयोग कर नहीं सकते, उसके बगैर हम बाबा को याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो अभी जो क्या हुआ, तो अभी ऐसी हालत हो गई तो मन राजा बन गया, और मन के अंदर क्या भरा हुआ था, अब क्योंकि औरा तो खत्म हो गया था सत्युग में, तो सत्युग तो औरा बहुत बड़ा बड़ा था हमारा, आभा मंडल बहुत बड़ा होता था, और हम आभा मंडल ही देखते रहते थे, जिसका आभा मंडल देखते रहते थे, गुणों में व्यवहार करते थे, शरीर की तो दृष्टि जाती ही नहीं थी, किसी की दृष्टि किसी के शरीर पर नहीं जाती थी, राधा ऐसे कहीं देह नजर ही नहीं आती थी, है ना। बस गुणों में जो हमारे गुण थे ना, धैर्यता, मधुरता, है ना, मतलब ये जो गुण थे ना हमारे, उदारता, सदा मुस्कुराते, हर्षित मुक्ता, है ना, ऐसे गुण थे हमारे, तो जो हमारे उसी गुण में हम व्यवहार करते थे, पवित्रता बहुत थी, है ना, भरपूरता थी हर चीज की, तो हम उसी में व्यवहार करते थे। कौन किसकी मुस्कुराहट ज्यादा, मुस्कुराहट बस मुस्कुराहट में खोए रहते थे, एक दूसरे की मुस्कुराहट में, ना है ना, सब मुस्कुराते थे, है ना, और सबका इतना सुंदर, जैसे आभा मंडल चमक सबके चेहरे में इतनी ज्यादा थी, है ना, लाइट ही लाइट थी हर एक के चेहरे में, तो उसी पे देखते, बस चेहरा देवता माना, चेहरा ही दिखाई देता था, आंख नाक कान मुख बस इतना ही दिखाई, देवता का रूप ऐसे था ना, ऐसे दिखाई देता था। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये हुआ ना, तो हमारे स्किन के लेवल पे औरा आ गया, आभा मंडल स्किन, अब देह दिखाई देने लगी, है ना। पहली बार क्या दिखाई दी, जब त्रेता के अंदर देह दिखाई दी, देह के कारण देह का आकर्षण हुआ, और मन राजा था तो मन ने क्या देखी, देह देखी, आंखों के द्वारा देह देखी, देह का आकर्षण हो गया, और फिर जो है आंखों में क्या भरा हुआ, मन में क्या जो कर्मेंद्र से, मन का कनेक्शन किससे, कर्मेंद्र से, और कर्मेंद्र का कनेक्शन किससे, सामने चीजों से, बाहर जो दिखाई देती है ना, देखा क्या, देह को देखा, पढ़ा क्या, देह के बारे पढ़ा, सुना क्या, दे से सुना, नहीं बोला क्या, दे वालों से, देहधारियों से बोला, और खाया क्या, देहधारियों के हाथ का बनाया वो खाया। पहले नेचर का हम तैयार खाते थे, नेचर का माल तैयार था, बनाने की बहुत कम आवश्यकता थी, सत्युग त्रेता में हर चीज पक्की पकाई थी, है ना, ज्यादा पुरुषार्थ था नहीं, ये नहीं घर में बैठ के खाना बनाओ, इस जो पत्नी खाना बना रही, ऐसा नहीं था, है ना, मतलब वो बहुत सारी चीज रेडीमेड मिलती थी, जब चाहे जहां चाहे खा ली, कोई ऐसे नहीं किचन पैक बना के ले जाना है ना, लंच पैक बना के ले जाना है, घूमने गए तो लंच पैक बना के जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं भरपूर फल होंगे, वहीं भरपूर चीजें होंगी, खाना पैक करके ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। अभी तो फिर खाना पैक करके ले जाने की आवश्यकता, तो मस्ती थी, ज्यादा टेंशन किस बात की होती है, माताओं किसकी बात की आवश्यकता होती है, खाना बनाना, खाना पैक करना, ये करना, वो करना, कपड़े की तैयारी करना, बहुत सारे काम करने होते ना, वो तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब हम पहुंच गए थे यहां पर, अभी हर चीज तैयार करनी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी, क्योंकि स्केर्सिटी हो गई, थोड़ा विनाश भी होता है ना उस टाइम, तो सब चीजें कम हो गई, भरपूरता खत्म हो गई थी, तो फिर ऐसी हालत आ गई। तो इससे जो है क्या हुआ, अब मन में इस तरह की बातें आने लगी थी, है ना। तो अब जो है ये देखा वो, अब ये रिकॉर्ड होने लगा अंदर, हमारे दिल में, हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड होने लगा ये वाली बात, देह ही हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गई, देह के संबंध रिकॉर्ड हो गए, है ना, देह के पदार्थ रिकॉर्ड हो गए। और देह का स्वभाव क्या था, आत्मा का स्वभाव तो 7 गुण थे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और शक्तियां, ये आत्मा का स्वभाव, आत्मा की नेचर थी, जैसे पानी की नेचर क्या है, ठंडक, है ना, ठंडक, ऐसे ही देह आत्मा की नेचर, ये 7 गुण है स्वभाव, और आत्मा के संस्कार फिर आने लगे धीरे धीरे, वो क्या था, आलस, क्योंकि देह को यूज करते थे, थक जाता था, अलबेलापन, वो जो बता 10 बातें बताई ना, वो देह के संस्कार आदतें थी। अब धीरे धीरे वो रिकॉर्ड होने लगे अंदर, है ना, जब जितनी बार किया रिकॉर्ड हो गया, है ना, धीरे धीरे विकार रिकॉर्ड होने लगे, आत्मा की बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगी, जो आत्मा में थोड़ा ज्ञान था ना, क्योंकि देह में आके हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आत्मा के अंदर थोड़ा थोड़ी जो ज्ञान था, समझ थी सत्य की, खत्म होती चली गई, बिल्कुल ना के बराबर रहने लगी, अभी ना धीरे धीरे खत्म होती, मैं आत्मा हूं ये निकल ही गया, क्योंकि मैं आत्मा हूं समझने के लिए 7 गुण चाहिए, 7 गुण जब होंगे ना, क्रिटिकल लेवल से कम होंगे ना, तो देह का मैं आत्मा हूं ये भूल ही जाएगा, क्योंकि एक तो मन रूपी पिंजरे में बंद हो गई आत्मा, है ना, और फिर मन कहां खो गया, देह में खो गया, देह की दुनिया में खो गया, तो मन अब तो ये आत्मा को याद ही नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं, ठीक है। जैसे एक 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 आदमी एग्जांपल देता हूं कि एक सेठ का बच्चा है, सेठ का, बहुत बड़ा सेठ है उसका बच्चा है, और वो बच्चा बचपन में खो जाए माँ बाप से और वो भूल जाए, भूल तो जाएगा ही, दो साल की उम्र में खो गया, अब तो भूल गया माँ बाप, माँ बाप उसको पता नहीं है, सेठ बहुत बड़ा है ना, और बच्चा भी क्या हो गया, उसको चोरों के हाथ पड़ गया, जेब कतरों के हाथ में पड़ गया, वो उसको जेब काटना सिखा दिया, चोरी करना सिखा दिया, भीख मांगना सिखा दिया। अब उसको कोई कहे कि तू तो सेठ का बच्चा है, तू अपने आप को सेठ समझना, तू अपने को सेठ समझना, बेचारे को रोटी खाने को है नहीं, सेठ कहां से समझे, वो तो मांग के खाता है, जेब काट के खाता है। अब सेठ उसको कहेगा मैं सेठ हूं, कह सकता है अपने आप को सेठ, भले को इसको 10 बार कहे तुम सेठ, तू वो करे कि तू अपने आप को बोल मैं सेठ का बच्चा हूं, मैं सेठ का बच्चा हूं, मैं सेठ का बच्चा हूं, तो कैसे कैसे कहेगा सेठ का बच्चा, कह सकता है, तो उसको अपने बाप को पता ही नहीं है, वो अपने आप को कहे भी तो सेठ का बच्चा बनता नहीं ना, क्योंकि एक दिन बाप उसको मिलता है, पहचानता है उसके बचपन के निशान से, उसका बचपन का निशान उसकी माँ मिलती है, बचपन पे निशान होता है उसका, जन्म का निशान होता है ना कई बच्चों के, तो माँ उसको पहचान लेती है, देखती है तो मेरा बच्चा है, उसको अंदर तुरंत ले जाती है, नहला धुला के जो फटे कपड़े होते हैं उसको चेंज करके फिर उसको क्या करती है ना, फिर कपड़े पहना के और उसको फिर बिठाती है, देखिए फिर उसके पिताजी को दिखाती है, देखो देखो हमारा बच्चा मिल गया ना, इतने साल का, 10 साल पहले खोया था, 12 साल का हो गया है ना, तो ये बच्चा हमारा बच्चा है ना, तो अब वो क्या कह सकता है, जब सेठ ने उसको अडॉप्ट कर ली, सेठ ने उसको पहचान लिया, फिर क्या कह सकता है, फिर जो है क्या कहेंगे वो, फिर अपने को मास्टर सेठ कह सकता है ना, अब कहेगा ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। वो पहले से नौकर थे ना, जो सेठ के नौकर थे वो इसको डांट मारते थे, वो भीख मांगने आया अपने घर पे, तो घर पे आया तो उसने सेठ के नौकर, एक नौकर आ रहा, उसने कहा भाग चल यहां से, कमा के खाओ, आप भीख मांगने आ जाते हैं ना, फिर वो खड़ा रहा, फिर भी फिर दूसरा नौकर आया, उसने उसको भी डांट मार के भगाया, चल भाग जाए यहां से, यहां कोई खाना वाना नहीं मिलता है ना, तीसरा नौकर आया उसने भी डांट मार के भगा दिया, आखिर में जब उसकी माँ आती तो पहचान लेती है ना, राइट। ऐसे ही हमारे साथ हुआ, हमें सबने भगाया ना, सबने, यहां भी गए, हनुमान जी के पास गए, गणेश ने कहा ठीक ठीक चलो ठीक है, खड़े रहो, हाथ जोड़ के खड़े रहो, प्रसाद बांटते रहो, भोग लगाते रहो, है ना, मैं तुम्हारी कुछ सुनने वाला नहीं हूं, है ना, तो मतलब ऐसा हुआ ना, तो बेसिकली ये हुआ कि हमारी जो सारी जो एनर्जी, तो ये है कि हमें आत्मा क्यों नहीं समझ पा रहे हम, हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो भी अब जब योग शुरू करते हैं हम क्या बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, अरे कभी ऐसे करते क्या, मैं MBBS में पढ़ रहा हूं, ए फॉर एप्पल से शुरू करता हूं क्या पढ़ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे करता हूं क्या, सीधी अंग्रेजी पढ़ाई करनी शुरू करते हैं ना, किताब पढ़नी शुरू करते हैं, किंतु बाबा के बच्चे 50 साल का होने के बाद भी क्या करते हैं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, नहीं ऐसा क्यों करते हैं, कभी बहनों ने सोचा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब तक 7 एनर्जी हमारे पास क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंचेगी, कम से कम 33% नहीं पहुंचेगी एनर्जी, ये वाली 33% बैटरी चार्ज नहीं हो जाएगी, तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, और फुल जब होगी ना, फुल माना जब 51% बैटरी चार्ज होगी ना, 51%, तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा मैं आत्मा हूं, और अनुभव होने लगेगा मैं आत्मा हूं, राइट। क्योंकि अभी हम कहां पहुंच गए, अभी हमारी बैटरी में बिल्कुल पावर नहीं है ना, देह विमान बहुत आ गया, काम क्रोध लोमो अहंकार, बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और अभी मैं को, अब जैसे बताया ना, देवता अपने को मनुष्य कहने लगे, जब मन के वश, मन राजा बन गया, अभी भी मन राजा है, ये 5 कर्मेंद्र अंदर भरा पड़ा है, रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, आत्मा में एक सॉफ्ट कॉपी है और ब्रेन में हार्ड कॉपी है ना, वो सब रिकॉर्ड हुआ पड़ा है पूरी तरह से, और वही हमको दिखाई देता है, वही हमको सुनाई देता है, वही हमारे साथ हो रहा है, अटेंशन रखते हैं तो हमको क्या होता है, हम अपने को आत्मा थोड़ी देर के अनुभव कर पाते हैं, जैसे ही अटेंशन टूटा वापिस देवमान शुरू, तो हमें जो है उस 51% डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा, 50% क्रॉस करेंगे और 51% माने कहां पहुंच जाएंगे, जब हम फिर हम त्रेता के अंत में, त्रेता के शुरू में पहुंच जाएंगे, त्रेता के अंत में पहुंच जाएंगे, अर्थात 63 जन्म जो हमने पाप किए हैं, विकर्म किए, देह विमान के वश में आके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में कर्म किए हैं, या और चीजों के वश में कर्म किए हैं, वो सारे विकर्म खत्म करने पड़ेंगे, उसे खत्म करना पड़ेगा, राइट, 63 जन्म के, क्योंकि तब हम, तब जाकर के विक्रम विनाश होंगे, तो हम कहां पहुंचेंगे, 51%, और जिस दिन 51% पहुंच जाएंगे तो हमारी कौन सी स्थिति आ जाएगी, अशरीर स्थिति आ जाएगी। कौन सी स्थिति आ जाएगी, तब जाकर के हमारी अशरीर स्थिति आएगी। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको देही मानी बन के बाप से बातें करनी पड़ेंगी। जो बाबा ने सिखाया, ये जो बाबा की मुरली है, इसका मनन चिंतन मंथन करना पड़ेगा। जो बाबा ने ज्ञान दिया, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्वास, इसका अटेंशन रखना पड़ेगा। राइट, देह में रहते मैं याद, ये याद करना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मेरे सरल संबंध उसके साथ है, एक एक संबंध की अनुभूति करना। और डी फॉर ड्रामा, मतलब मैं किसमें इसको ज्ञान को हमेशा ABCD कहता हूं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो मैं इजी याद रहे ना, ताकि मुश्किल ना लगे ना, ABCD तो आता ही है बच्चों को। और हम बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, बड़े बच्चे तो है नहीं हम, तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, ABCD करेंगे, और तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो हम अपने आप को बस, चले हमें मुरली भी याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, वैसे तो मुरली याद रहनी चाहिए, चलो ABCD तो याद रहेगा, है ना। तो चलते फिरते अनुभव करते रहो, मैं कौन हूं, मैं स्थूल देह ने स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भ्रुक्टों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये दोनों कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, मैं यहां बैठी हूं, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, है ना। और मुझ आत्मा से क्या हो रहा है, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं वो मस्तिष्क की 16 कोशिकाओं में जा रही है, आंखों में जा रही है, नाक में जा रही है, मुख कानों में जा रही है, मुख में जा रही है, और पूरी स्किन, है ना, पूरी हमारी स्किन है ना, त्वचा है, बाहर भी त्वचा है और एक अंदर भी त्वचा है, मुंह के अंदर त्वचा, सांस की नाली के अंदर त्वचा, पेट की नाली के अंदर त्वचा है, हमारी जो नसें हैं आर्टरीज उनके अंदर त्वचा है ना, किडनी के अंदर भी त्वचा है ना। तो वो एक सारी स्किन को नशो, प्लस शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रहे, फील करो इस बारे में, शरीर की कोशिका में यही एनर्जी जा रही है, मैं आत्मा चला रही हूं, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। ये काम हो रहा है, दिन रात हो रहा है, अगर आत्मा निकल जाए तो सब कुछ बंद हो जाए, ना आंखों से दिखाई दे, ना कानों से सुनाई दे, ना मुख से बोले, तो चलते फिरते उठते बैठते ये जो काम हो रहा है इसको अनुभव करो, इसको क्या करो, फील करो, इसको रियलाइज करो, ये सत्य बात चल रही है, ये हो रहा है, हर समय हो रहा है ना। तो ये अवेयरनेस जब करेंगे चलते फिरते, हमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, तो बाबा कौन है, वो 7 चैतन्य शक्तियों का, आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है, पावर हाउस है। तो हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते, बाबा को याद करते, और संबंध से याद करते, मुख्य 9 संबंध हमारे बाबा के साथ है, कौन कौन से हैं, एक तो माँ का संबंध है, बाप का संबंध है, टीचर का संबंध है, और सतगुरु का संबंध है, बंधु माना बड़ा भाई का संबंध है, और सखा दोस्त का संबंध है, और साजन का, और सज्जन का, और बच्चे का, वैसे तो बहुत सारे संबंध है, वो हमारा धोबी भी है, सुनार भी है, लुहार भी है, जादूगर भी है, रत्नागर भी है, सौदागर भी है, सब कुछ बहुत सारी चीजें कर सकता है वो, जो जब चाहे कारपेंटरी काम करे कारपेंटर भी है, है ना, कुछ भी करा लो साथ में, है ना, ड्राइवर ड्राइविंग करे तो ड्राइवर भी है, है ना, साथ में बैठा लो, मैं जो आपको चाहिए हर जगह वो अवेलेबल है, ठीक है, हर संबंध उसके साथ है। और ये सृष्टि रूपी ड्रामा है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर एक आत्मा एक्टर है, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, है ना, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे नौकर चाकर हो, हम सब कौन है, एक्टर है। और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, कितना 100% 99% 100%, इसका मतलब क्या, एक्यूरेट पार्ट प्ले कर, हिसाब किताब का क्या मतलब, कर्मों के हिसाब किताब क्या है, कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है, शायद आपको पता होगा, हम कहते हैं हमारे कितने सालों से हम इकट्ठे हैं, 5,000 साल से इकट्ठे हैं ना, एक ही चलते पूरे कल्प में है हमारे, हम आत्माओं के संबंध सतयुग में भी रहे, त्रेता में भी रहे, द्वापर कलयुग में भी रहे, पर खाली 100 साल की अगर बात लें, अगर हम 100 साल पहले माने, जो आत्माएं जिनके साथ मेरा लेन देन था, मेरा एक दोस्त था, उससे मैं 10 रुपये उधार लिया, उसको वापस नहीं किया, शरीर छोड़ दिया। अब 10 साल के बाद वो मेरा बन के आ गया, कौन मेरा बेटा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, पति बन के आ गया, या माँ बाप बन के आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे उसको, बिजनेस पार्टनर बन के आ गया, क्या करना पड़ेगा? 10 रुपया उसको वापस देना पड़े, देना पड़े, हिसाब किताब क्या होगा, ब्याज कितना होगा? आप लगा के देखना, ब्याज मैंने एक दिन लगाया था बैठ के, 4,19,00,000 रुपए बनता है 100 साल का ब्याज। पता है कितना, इतना ब्याज बनता है, तो इतना ब्याज है उसका ना, क्योंकि 1916 से लेकर 1946 तक 3 साल में पैसा डबल होता था, 46 से 66 तक 4 साल में डबल होता था, 66 से लेके 86 तक 5 साल में, और 86 के बाद अब 7-8 साल में डबल होता है। तो 20 बार डबल करके देखना, आप करके देखना कागज में, तो आपको समझ में आएगा, 20 बार डबल करके देखना, 4,19,00,000 रुपया बनेगा, ठीक है? तो अब हिसाब किताब के साथ है ना, हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर, ठीक है? तो ये हिसाब किताब भी देना पड़े, नहीं देना पड़े? आपने 100 साल में किसी एक बार इंसल्ट की, कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी अभी? 4 करोड़ तो नहीं होगी, 100 बार तो कम से कम होगी ना, है ना? 100 बार तो होगी ना, है ना? चलो 20 बार, मैंने कहा 20 गुना होती है, ना 20 गुना 20 बार करना पड़े, मल्टीप्लाई 20 बार डिवाइड करो, तो 20 बार तो होगी ना, नहीं होगी? एक गाली थी तो कितनी गाली खानी पड़ेगी? अगर एक बार बीच में कमेंट कर दिया तो क्या होगा, डबल हो जाएंगे, ठीक? एक बार कमेंट कर दे, तुमने मेरे को गाली क्यों दी, तो एकदम सीधे 40 हो जाएंगे, ठीक? सुना, एक बार इंसल्ट की, एक बार इंसल्ट पे नाक चढ़ाई या ऐसे मूड बनाया या कुछ अंदर सोच लिया तो क्या होगा, 40 बार हो जाएगी सीधा डबल, एक बार फिर दोबारा किया तो 80 बार हो जाएगी, और वो इंसल्ट सहनी पड़ेगी, है ना, राइट? एक बार दुख दिया तो 20 बार दुख, वही दुख सहना पड़ेगा। तो कर्मों का ये हिसाब किताब है, और शिव बाबा क्या है, ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी, और सुप्रीम डायरेक्टर, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। हमारे वैध संकल्प, नेगेटिव संकल्प कहां से आते हैं? ये पास से आते हैं। मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता, उसको मैं ऐसे नहीं कर दूंगा, बाकी को बेशक मार दूंगा पर उसके साथ ही रहूंगा, है ना, छोड़ के भाग जाऊंगे, है ना, दुनिया में ऐसा ही होता ना। मतलब ऐसा हमने ऐसे पिछले जन्म 90% विचार वहीं से आते हैं, हमारे पास से आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उससे भरा हुआ है, यही हमारे विकर्म भरे हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जब हम 22वां जन्म लिया तो 22वें जन्म में हमने जो पाप किए ना, सत्युग त्रेता में तो हमारा एकदम, हमारा 100% कॉन्शियस माइंड था, ट्रांसपेरेंट थे हम बिल्कुल, सबकॉन्शियस कुछ था ही नहीं, अनकॉन्शियस कुछ था ही नहीं। जब पहली बार जब हमारे अंदर जब देहवान आया, दिल में देहवान, बुद्धि में देहवान चला गया, देह के संबंध चले गए, देह के स्वभाव, सब संस्कार, देह के पदार्थ चले गए, तो क्या हुआ, अब विवेक बुद्धि परखनी शक्ति कंफ्यूज हो गई, मतलब विवेक कंफ्यूज हो गया, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई, और चित्त तब पहली बार चित्त बना, तब सबकॉन्शियस माइंड बना, तो सबकॉन्शियस माइंड में तब ये चली गई फाइल, जो हमने जो निर्णय नहीं कर पाए वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अगर मैं निर्णय करूं बच्चा है, मैं उसको डांट लगाऊं तो उसकी माँ बोलती है तू डांट क्यों लगाई इसको, अब उसके कोई विकार का संबंध है तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उसको कुछ डांट नहीं लगा सकता, वो मुझे पता गलत काम कर रही है, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि गलत संबंध है। तो इसके कारण क्या हुआ, ऐसे हमारा चित्त भारी होता चला गया, चित्त में वो फाइल चित्त में जा रही थी, मन में नहीं जा रही थी, मेमोरी में नहीं जा रही थी, चित्त में जा रही थी, और वो हमने सॉल्यूशन नहीं किया था, हमने जजमेंट नहीं दी थी, तो फाइलें सब चित्त में जाती गई, चित्त चलता गया, जितने पाप पर काम का पाप कर्म करते चित्त में चलते गए, चित्त में भरता गया, चित्त सबकॉन्शियस में चंचल हो गया, चंचल हो गया, बेचैन हो गया, अशांत हो गया, एकाग्रता खत्म हो गई। तो जब मैंने 23वां जन्म मिला तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या बन गया, अनकॉन्शियस माइंड बन गया, इसके आधार पे 23वां जन्म मिला और फिर 23वां जन्म का सबकॉन्शियस शुरू हो गया। ऐसे करते करते 83वां जन्म में पहुंच गए, तो 62वां जन्म का तो हो गया सब अनकॉन्शियस माइंड, जिसके आधार पे हमको ये जन्म मिला, जहां ये पति पत्नी मिले ना, माँ बाप भाई बहन मिले, ये 62वां जन्म के कर्मों का फल है जो मिले, छोटी मोटी बात नहीं है, जो आपकी पत्नी मिली है या पति मिला है या बच्चे मिले हैं, ये 62वां जन्म कर्मों की कमाई है आपकी, है ना, अब इनको पार करके आपको कहां जाना है, बाप के साथ वापस घर जाना है। सुना, जो भी संबंध संपर्क मिले छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना, यहीं से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यहीं से सर्टिफिकेट लेके जाना, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, ऊपर से जा रही है। हा? तो बासठ जन्म के पाप कर्म छपे हुए हैं ना, और बासठ जन्म के अनकॉन्शियस माइंड और एक जन्म का सबकॉन्शियस माइंड, एक जन्म का चित्त, ये वाला चित्त जो आप डिसीजन, हम बाबा के बच्चे बन के भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब तीसरे जन्म का सबकॉन्शियस, सॉरी बासठ, हाँ वही बासठ और एक, ये बाबा का, बाबा के बनने का 84वां जन्म, तो ये इस जन्म का सबकॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस भारी हो गया, बड़ा सारा हो गया, तो इससे चित्त, हमारे संकल्प कितने चल रहे हैं, बहुत संकल्प चल रहे हैं। तो काम के संकल्प 2-3 चलते हैं और 25-26 संकल्प चलते हैं बेकार के, जो मतलब पास से या भविष्य से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक बाबा ने ज्ञान जो दिया ना, अपने को आत्मा समझ, ये जो ABCD दिया ना, सत्य के सत्य ज्ञान दिया, सत्य की समझ दी है, बच्चे तो इस सत्य की समझ, ये मुरली जो दी है, इसका मनन करो, मनन मतलब इसको रिवाइज करो, चिंतन गहराई में जाओ, मुझे ये बनना है, मंथन मंथन मना, अब जब मनन करते मंगन हो जाते हैं ना, बाबा से पूछते हैं, बाबा ये तो मुरली में जो आपने लिखा है, ये मैं ऐसे बनना चाहता हूं, कैसे बनूं मैं ऐसे, मेरे को तो बहुत काम रहता है, मेरे को तो ये रहता है, मेरे को तो वहां पे, जो भी आप काम करते हैं, घर में माताएं हैं, मुझे तो इतना काम करना पड़ता है, बर्तन धोने, काम करना, खाना बनाना, मैं कैसे करूं, ये जो भी दुकान पे बैठते हो, बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, बाबा से पूछो, बाबा आप, मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, तो बाबा बताएगा, बच्चे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे बन सकते हो, ऐसे करो, है ना। तो जैसे डॉक्टर का काम है, डॉक्टर बाबा, बाबा मैं कुछ पेशेंट आईसीयू में देखने हैं, मेरे को तो बहुत सीरियस पेशेंट देखने होते हैं, जान मर, लोग मर रहे होते हैं, चिल्ला बारिशदार चिल्ला रहे होते हैं, अंदर पेशेंट चिल्ला रहा होता है, तो मैं क्या करूं, ऐसे मैं किसको याद करूं, अब आपको उसको याद करूं, आपको याद करूं कि उसको याद करूं, या जो उसको ट्रीटमेंट देना है उसको याद करूं, क्या करूं मैं। तो बाबा फिर बताता है, बच्चा तुम ऐसे करना, इसका मैंने इसमें जो लाइन बताई ना, इसके पीछे इसके ये तरीका है। तो ये जो है बाबा की श्रीमत को याद रखना, देह में रहते हर कार्य करते, इसको बोलते देहिमानी स्थिति, राइट। देहिमानी बनने का, देह में रहते देह में रहते देहिमानी बन के बाप को याद करने का अभ्यास करना, राइट। ऐसे अभ्यास करते करते हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं, जब विक्रम विनाश होने लगता है तो धीरे धीरे हमारी स्टेज क्या आने लगती है, धीरे धीरे आत्ममानी स्थिति आने लगती है, थोड़ा थोड़ा सोल कॉन्शियस, थोड़ा माथे पे चमक आने लगती है ना, आत्मिमानी, थोड़ा हमें अटेंशन लेने लगता है, मैं आत्मा हूं, थोड़ा थोड़ा टेंशन, बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा टेंशन, आत्मिमानी स्थिति आने लगती है। और जैसे जैसे हम ये विक्रम विनाश करते जाते, देखो जितने भी जो है ना सत्य की समझ ABCD, जितना इसका मनन चिंतन मंथन से, मंथन करे, मंथन किया, सिमरण माना, फिर उसको कार्य में लगाओ, सिमर सुख पाओ, माना जो मंथन मक्खन निकला उसको फिर बुद्धि में रखो कार्य करते समय, ठीक है, खाना बनाते समय, खाना खाते समय, पैदल करते समय, है ना, हर काम करते समय याद रखो, शेव करते समय, ब्रश करते समय, है ना, हर समय याद रखो, श्वासों श्वास याद रखो। तो वो जब करेंगे ना हम लोग हमारे अंदर, तो अंदर नया रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर नई नई फाइल्स बन रही है, नई रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये जो नई रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ये नई रिकॉर्डिंग जो हो रही है, इससे क्या होगा, हमारे अंदर नए संस्कार बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अब ये संस्कार क्या बन रहा है, ये आत्मानी स्थिति का संस्कार बन रहा है, क्या बन रहा है, आत्मानी स्थिति का संस्कार बन रहा है। सुने, तो पहले देहिमानी, देह में रहते देही का अटेंशन रखना, ये देहिमानी स्थिति होगी, समझिए देहिमानी स्थिति। और फिर नए संस्कार कौन से बन रहे, आत्मानी स्थिति के संस्कार, मैं आत्मा हूं, क्योंकि हमने जितना जितना बाबा को याद किया है नए संस्कार बने हैं। आई दीदी ओम शांति। तो ये आत्मानी स्थिति के संस्कार बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं आत्मा हूं, ये संस्कार बनते जाएंगे, तो आत्मानी स्थिति आ गई। अब इसी को और अटेंशन चालू रखो, ये स्थिति और बढ़ाते जाओ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब क्या होगा, जैसे हमने ABCD का, अब बेसिक राजयोग क्या है, राजयोग कुछ और नहीं है, सत्य की समझ, इस ज्ञान को रियलाइज करना, क्या करना, इसको रियलाइज करना, इमेजिन नहीं करना, विजुलाइज नहीं करना, इमेजिन और विजुलाइज वो करते हैं जिनको ज्ञान ना हो, जो विदेशी राइटर होते हैं ना, जो विदेश में जो होता है ना, जो किताबें लिखते हैं ना, उनको आत्मा का पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं, तो उन्होंने इमेजिन किया कि ये क्या है, आत्मा क्या है, बीइंग क्या है, परमात्मा क्या है, ऊपर ऊपर का जो लोक है, लोक है वो कैसा है, उन्होंने इसको इमेजिन किया है, फिर उसको उसके अनुसार उसको विजुलाइज करने की कोशिश की है। बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया है, हमें पूरा पूरा ज्ञान दिया है, गहराई से दिया है, सत्य ज्ञान दिया है, हमको उसको रियलाइज करना है, उसको अनुभव करना है। जैसे आत्मा को हम देख नहीं सकते, किंतु आत्मा को हम जान सकते हैं, ज्ञान की तीसरी नेत्र से देख सकते हैं, तीसरा नेत्र माना बुद्धि से जान सकते हैं। जैसे हमने कहा, किसी ने कहा अच्छा आम, आपका आज का दशहरी आम आता है, चौसा आम आता है, पहले दूसरा आम आते थे, आम खाके तो देख कितना मीठा है, खाके देखा आपने, दिखाई दिया हा? आम दिखाई दे कि आम का टेस्ट दिखाई दिया हा? आम आम खाके तो देख कितना मीठा है, मीठा दिखाई दिया क्या आपको? ऐसे ही ऐसी आत्मा को देखना है, ठीक है, ऐसी परमात्मा को भी देखना है, परमात्मा देख कितना मीठा है, याद करके तो देख, है ना, परमात्मा कितना कितना प्यारा है, प्यार करके तो देख, है ना, तो दिखाई दिया क्या, अनुभव हुआ ना। तो इससे कई लोग ये विजुलाइज करना, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, ऊपर शिव बाबा चमकता हुआ सितारा है, ये हमें विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। द्वापर उससे हम मूर्तियां बनाते आए, अभी हम वैसी मूर्ति नहीं बनाते, हम कैसी मूर्ति बनाते हैं, अब विचारों की मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, है ना, मूर्ति नहीं बनानी है हमको, क्या करना है, हमको चलते फिरते उठते बैठते श्वासो श्वास ये अनुभव करना है, मैं आत्मा ऊर्जा हूं जो बैठ के सारे शरीर को चला रही है, देख कौन रहा है, ये एनर्जी देख रही है, सुन बोल कौन रहा है, मैं आत्मा बोल रही हूं, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इस तार में बिजली देखने की आवश्यकता है क्या आपको, कैसे कैसे पता बिजली है इसके अंदर, ये बोल रहा है, लाइट चल रही है, ज्यादा शौक हो तो क्या करो, तार हटा दो, है ना, अब तार में बिजली दिखाई देगी, तांबे के तार में दिखाई देगी, और ज्यादा शौक हो तो क्या करो, नंगे तार को हाथ लगा के देख लो, पता लग जाएगा, है ना, नहीं तो हमें ये इसके पीछे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप घंटों घंटों भी ये करते रहते बैठे बैठे, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो चलते फिर श्वासों श्वास इसको याद करने का, ये अटेंशन रखने का, तो इसको जितना अनुभव करते जाएंगे, तो जितना हम करते जाएंगे, तो इसको बेसिकली पवित्रता क्या है, आप क्या समझते हैं, पवित्रता ऊपर से आती है कि हमें बनानी पड़ती है, हा? बाबा पवित्रता का सागर है, मेरे अंदर पवित्रता आ रही है, ऐसे ऐसे पवित्रता आती है क्या, नहीं आती। जितना एबीसीडी का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे, बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे, उतना क्या होगा, उतना मन और बुद्धि पवित्र होता जाएगा। पवित्रता का मतलब क्या है, कैसे पवित्रता बनती है, अपने को अपने सत्य स्वरूप में टिक, सत्य बाप से कंबाइंड होकर, फिर क्या करो, दूसरों के सत्य स्वरूप को देखो, सत्य स्वरूप को देखना, सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, अपने खाली मैं आत्मा समझ के आपको देखू ना, तो मुझे आत्मा दिखाई नहीं देगी, आत्मा रूप में व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आत्मा के पास बहुत थोड़ी सी एनर्जी है, किंतु बाबा से कंबाइंड होकर जब मैं देखूंगा आपको, तो मुझे आत्मा दिखाई देगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, एक बच्चा भिखारी बच्चा अपने को सेठ नहीं कह सकता, है सेठ का बच्चा, कि जब सेठ की उंगली पकड़ के करेगा तो क्या करेगा, सेठ की उंगली, सेठ को उंगली पकड़ने दे, फिर क्या है इसको, फिर दूसरे नजर आएंगे, हाँ ये ऐसे हैं, उनके पास नजर आएगी, ठीक है, बिना सेठ की उंगली पड़े वो अपने को सेठ नहीं समझ सकता है ना, उसका कनेक्शन सेठ से होगा तो उसके पास पैसा सब कुछ आ गया है ना, फिर वो कह सकता है मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं, ठीक है, तब उनको दूसरे का सत्य स्वरूप नजर आएगा। तो इसे सत्य स्वरूप देखने के लिए दूसरे का बाबा से कंबाइंड स्थिति चाहिए, ठीक है, तो किसी से लगाव रखना भी अपवित्रता है, किसी से झुकाव रखना भी अपवित्रता है, किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है, और किसी से टकराव रखना भी अपवित्रता है, ठीक है, और इस दृश्य रूपी ड्रामा में किसी के पार्ट को देख करके क्या क्यों कैसे करना कब कैसे करना यह भी अपवित्रता है, क्योंकि वैध संकल्प चलते हैं उससे। तो बाबा की पवित्रता का मतलब क्या है, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना, कैसे ब्रह्मा बाबा ने जीवन बिताया, ज्ञान मिलने के बाद, बाबा के मिलने के बाद ऐसा जीवन, तो ये पवित्र, जितना जितना इस एबीसीडी का अभ्यास करें पवित्रता आएगी, फिर शांति कैसे आएगी, कैसे कैसे आत्मा मन स्थिति आएगी, मैं आत्मा मन स्थिति की तरफ जा रहा हूं, देह मन स्थिति से आत्मवन, तो यह आया ना अपवित्रता, आत्मिक अभिमानस्थिति टिक गई, टिक रही है अभी, है ना। मैं अगर किसी को अपने बच्चा, अपना बेटा देख के, बेटी देख के, बहन देख के, भाई देख के बात करूंगा तो क्या होगा, फिर मैं देवान में आत्मा देख कर आत्मिक व्यवहार नहीं कर सकता, मुझे लगाव आएगा, झुकाव आएगा, प्रभाव टकराव आएगा, क्या क्यों कैसे आएगा। किंतु अब अपने को आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड होकर देखूंगा, व्यवहार करूंगा, तो फिर अब लगाव से खत्म, प्रभाव खत्म, झुकाव टकराव खत्म, और क्या क्यों कैसे खत्म। बाबा डायरेक्टर है ना ड्रामा का, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये पवित्रता, जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी अब उसे शांति आएगी। शांति माना अभी पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करता है, उसने मेरे को ऐसा किया, ये मेरे को धोखा दिया, मेरे को मेरे पैसे लूट लिए, है ना, मेरी इंसल्ट की, फिर ये याद नहीं आएगा। फिर क्या होगा, पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, और बाबा से कंबाइंड होकर के फिर हम सोचेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर देखेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर सुनेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर बोलेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर खाएंगे, इसको बोलते हैं, बाबा से कंबाइंड होकर व्यवहार करेंगे दूसरों से, इसको बोलते हैं शांति। शांति माना ना पास्ट का चिंतन, ना भविष्य की चिंता, और वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड होकर सोचना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, संबंध संपर्क में आना, सैर करना, घर ऑफिस में काम करना, और या सोना, इसको बोलते हैं शांति, ठीक है। पहले 30 विचार आते थे, अभी क्या हुआ, अभी 27-90% विचार पास से आते थे, भविष्य से आते थे, अब कितने विचार रह गए, 3 विचार रह गए, इसको बोलते हैं शांति, ठीक है। 30 है शांति और 3 है शांति। अब ये आ रही है आत्मनिष्ठ, आत्मिक आत्मनिष्ठ आती जा रही है शांति, आत्मा का स्वधर्म है ना, आता जा रहा है, ठीक है। कैसे आया, ऊपर से आया कि बनाया, बनाया, ठीक है। ये हमको, ये मेहनत है, इसमें मेहनत है, ठीक है। ये बाबा ने हम, ये बाबा की कृपा हमारे पे आशीर्वाद क्या है, बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया। अब अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये अपनी घोटो, जितना घोटते जाओगे, मुरली का बार बार पढ़ोगे, मनन चिंतन मंथन स्मरण करोगे, मर्यादाओं के अंदर रहकर कार्य करेंगे, नियम मर्यादाओं के अंदर रहेंगे, उतना ये शांति आती जाएगी। मतलब पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, और वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहेंगे, तो ये शांति आएगी। अब बाबा हर समय साथ है तो शांति है, आत्मा का सदरम याद है, पवित्रता, जैसे उसी तरह से पवित्रता की बात बताई मैंने, फिर हम ऐसा हो जाएगा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म, क्या क्यों कैसे खत्म। अब शांति आ गई, अब क्या किया, अब बाबा से कंबाइंड होकर क्या करो, बाबा से कंबाइंड होकर अब क्या करो, विश्व में हर आत्मा को, कोई भी हो, आपके घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे आपका लौकिक संबंधी हो चाहे अलौकिक संबंधी हो, विश्व में हर आत्मा को उसके हर पार्ट को देखते हुए, हर पार्ट को महत्व देते हुए, हर पार्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए, बिना शर्त के, आदर के साथ स्वीकार करो। किसके साथ, बिना शर्त के आदर से स्वीकार करो, हर आत्मा के हर पार्ट को देखते हुए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे बाबा हमको ऊपर से देख रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो भी देखो तो अभी किसको कुछ देखने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, कभी मोबाइल में शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप शुरू हो जाता है, है ना, कभी कुछ देखने लगते हैं, कभी किससे बात करने लगते हैं, बाबा को याद करना भूल जाते हैं, खाने के स्वाद में खो जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे ना समझ रहे, फिर भी हमारा अनादि और आदि स्वरूप देखे, मीठे बच्चे करता रहता है, नहीं स्वीकार करता है, नहीं करता, फिर भी ये नहीं बोलता तू निकम्मा है, तू ऐसा करता, तू ऐसा कर, तू सुनता नहीं है क्या मेरी बात, ऐसा नहीं बोलता है ना, स्वीकार करता है। 80 साल से पढ़ा रहा है तो भी कभी उसको कोई बात नहीं होती है ना, तो हमारे हर पार्ट को महत्व देता है और आदर से स्वीकार करता है बिना शर्त के। ये नहीं कहता अगली बार किया तो अगली बार तेरे को बात नहीं करूंगा तेरे से, नहीं ऐसा नहीं बोलता है। ऐसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में या जहां भी हम रहते हैं वहां पे क्या होता है, ऐसे तो रामायण में एक राम की पार्टी, एक रावण की पार्टी है ना, उधर रावण की पार्टी में कौन होगा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शूर्पणखा, मंदोदरी है ना, इधर राम की पार्टी में कौन, राम, सीता, लक्ष्मण है, हनुमान है और भरत है, और सबके कई है, और सुमित्रा और कौशल्या। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे घर में सब रामायण पूरी मिक्स हो जाती है एक ही साथ ना, क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले राम था, अभी थोड़ी देर रावण बन जाता है, वही बच्चा या वही साथी है ना, थोड़ी देर में देखो अभी सीता थी, अभी शूर्पणखा बन जाती है ना, है ना। तो बस ऐसे पार्ट बदलते रहते हैं,
अभी देखो तो कुंभकर्ण बन जाता है, उठाओ उठता नहीं है, है ना, बोलो तो बोलता नहीं है, बोलता अकड़ से बोलता है, है ना, बिना मर्यादा के बोलते हैं, बोलते हैं ना, तो क्या करो, यहां रूहानी प्यार आता है। ठीक है, हर आत्मा के पार्ट, हर पार्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए, सो रहा है ना, सोने दो, उसमें मत बोलो, है ना। मान लीजिए आपको बच्चा सो रहा है, आप उसको बार बार बोलो, उठ जा तू आलसी है, तू कुंभकर्ण है, है ना, तो क्या करेगा वो, अगली बार तुमसे बात भी नहीं करेगा, तुम्हारी तरह देखना भी पसंद नहीं करेगा। तुम ज्ञान सुनाओ, कहता तुम ज्ञान, पापा ज्ञान अपना अपने पास रखो, चलो मेरे से बात नहीं करो, है ना, मैं आपसे कोई, मुझे कुछ नहीं बात करनी है आपसे, देखा आपका ज्ञान मुझे कितना है आपको, है ना, उस तरह थका हुआ हो, उसके सिर में दर्द हुआ, आपको नींद ना आई हो, सो रहा सोने दो, ठीक है, और उसके बिना शर्त के आदर से उसको स्वीकार करो, ठीक है, और फिर ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अंदर रह के उसकी पालना करो, ये है रूहानी प्यार। फिर जैसा कर्म कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा, उसमें जाके फिर इंटरफियर नहीं करो, उससे फिर मुंह नहीं दिखाओ कि बेटा तूने नहीं पढ़ा कोई हर्जा नहीं है, मैं तेरे को पास करा दूंगा, ये है फिर मोह, है ना, समझ गए। अभी हम ऐसे करते हैं, है ना, उसको फिर गलत करते हैं, गलत कर रहा है संबंध, उसके बाद भी उसको हम मोह के वश होकर के उसको हम वो करते हैं, तो ये रूहानी प्यार नहीं। रूहानी प्यार माना ये है, सबको स्वीकार, समाज में जो भी कोई कुछ कर रहा है, आतंकवादी है, कोई कुछ भी करता है, कैसा भी करता है, बीके है, नॉन बीके, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बाबा सबको देख रहा है, कुछ कुछ नहीं बोलता, आतंकवादी कुछ नहीं कहता, बोलता है क्या, देखो आप देखो महाभारत की, उसमें जब सभा थी जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां पे दुशासन दुर्योधन चीरहरण कर रहे थे, वहां भीष्म भी बैठा था और भी लोग बैठे थे, कृष्ण द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तो द्रौपदी को क्या दिया उसने, कपड़ा वस्त्र दे दिया, कि तू ये कहा कि दुशासन को, अरे तू क्यों ऐसे क्यों करता है, तू बंद कर। भीष्म को नहीं बोला क्या, अरे तुम इतने बूढ़े आदमी हो, घर के दादा हो, तुम इसको बोल नहीं सकते क्या, ऐसा बोला क्या, उसका कर्म उस समय उसका फल था, द्रौपदी को उसके कर्म का फल मिला, किंतु द्रौपदी ने फिर उसको पुकारा तो फिर उसको हेल्प किया, राइट, समझा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। तुमने पिछले जन्म में अपने बेटे के साथ ऐसा किया था, वो भी तुम मजे से होते थे, वो आवाज देता रहता था, तुम सोते रहते थे, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, सुना, समझ रहे हैं। तो ये इसको आदर से स्वीकार करना, ये है रूहानी प्यार। जब ऐसा रूहानी प्यार करा, सबको स्वीकार किया, तो फिर आप कहां पहुंच गए, फिर आप दुनिया, आपकी कॉन्शियसनेस दुनिया से ऊपर उठ गई। पहले कहां अटकी हुई थी, लगाव में, झुकाव में, प्रभाव में, टकराव में, ऐसा ये ऐसी वो वैसा वो वैसा। तो जो उसके अंदर रूहानी प्यार नहीं है, वो बाबा से अत्यंत सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकता। जब तक दुनिया में हमारी बुद्धि फंसी, मन फंसा हुआ, तब तक बाबा के साथ की साथ का अनुभव कर नहीं सकते। जब हम ऐसी स्थिति, जब सबको माफ कर देते, सबको स्वीकार कर लेते आदर से, और ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर, नियम मर्यादाओं के अंदर रहकर उछलते हैं, तो हम बाबा के सामने पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा के दिल, बाबा का दिल तक, हम बाबा के दिल तक पे पहुंच जाते। बाबा के दिल तक पे भी कौन बैठा है, दिल में कौन बैठा है, एक ही बैठा है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा अभी तक बैठा है, बाकी कोई बैठा नहीं वहां पर। तो ब्रह्मा बाबा के सामने पहुंच जाते, मतलब ब्रह्मा बाबा की गोद में पहुंच जाते। ये जो फीलिंग है, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अतीन्द्रिय सुख माना, अब सब इंद्रियों से ऊपर, इन सब इंद्रियों से ऊपर, सब देखना सुनना इससे ऊपर चले गए हम, और अभी हम इस दुनिया के ऊपर चले गए। सूक्ष्म माना पवित्र, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन के साथ, अब हमारी बुद्धि और मन पवित्र हो गया, अभी हमारा किसी के साथ लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं है, हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं है बाबा के अलावा, मन में भी कुछ नहीं है, शुद्ध है, बस बाबा है और ABCD है, और हम बाबा के पास पहुंच गए। सुना, अब ये फीलिंग आई कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, अब कोई इच्छा नहीं रही, इच्छा मात्र में विद्या हो गई। ये स्थिति संतुष्टता की स्थिति, जो आज का वरदान था, ये संतुष्टता की स्थिति, ये संतुष्टता की स्थिति में जो वो स्थिति, ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, क्या है, खुशी है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, कि बाबा ऐसे है, बाबा मेरा, बस बाबा मुझे वैसे अपनी गोदी में लेके बैठा हुआ, बाबा का हाथ मेरे सिर पे है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बच्चे कैसे है तुम, ठीक है, तुझे डरने की बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। ये जो फीलिंग है ना, ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, और अत्यंत ऐसी अत्यंत सुख की अनुभूति आई, अभी अभी आत्मा स्थिति आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, ये आत्मा की स्थिति बढ़ती जा रही है ना। और जैसे आनंद, अब आनंद आया, आनंद माना अब आत्मा बाबा के लव में लीन हो गई, अब बाबा के लव में लीन खो गया, मतलब अब बाबा ही रह गया, बाकी कुछ नहीं, खत्म हो गया, मतलब मैं बाबा के लव में इतनी खो गई अब मुझे कोई भान नहीं रहा। ये आनंद के, आनंद माना बंधन, आत्मा पंछी है, बंधन देह के बंधन में फंसा हुआ था ना, मन बुद्धि संस्कारों के बंधन में फंसा हुआ, अब आत्मा इससे मुक्त होकर के बाबा के साथ आनंद स्थिति है, ब्लिस। और जब ऐसी स्थिति आ गई, आनंद की अनुभूति हो गई, अत्यंत सुख की अनुभूति हो गई, अब सत्य को परखने की शक्ति आ गई, परखने की शक्ति नहीं, सत्य को परखने की शक्ति, सत्य ये सत्य है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो अत्यंत सुखी चाहिए, मुझे तो यही आनंद चाहिए, मुझे कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया कुछ भी नहीं चाहिए, सब ले लो, अब मुझे बाबा ही चाहिए, बाबा ही मेरा है, बाबा ही सब कुछ है मेरा, ये जिसको फीलिंग आ गई ना, अब ये स्थिति बढ़ती है आत्मन स्थिति। अब ये क्या आ रही है, अब ये स्थिति आ रही है अश्री स्थिति आ रही है, क्या आ रही है, सत्य को परखने की शक्ति आ गई, सत्य निर्णय करने की शक्ति आ गई, सत्य निर्णय करने की शक्ति आ गई, सत्य निर्णय कर लिया, मुझे बस बाबा का ही करना, मुझे तो अमृत वेले में सुबह कुछ भी हो जाए, रात को 12 बजे सोऊं तो भी मुझे 3 बजे 3:30 उठ के बाबा की याद में बैठना है, धरती धरती उधर हो जाए, घर वाले लाख मना करें, कुछ भी कहें, सेंटर पे मत जाओ, कुछ मत करो, मुझे जाना ही है, किसी बहाने से जाना, कैसे भी करके जाना, मैं जाना ही है, मुझे बाबा की याद में करना ही है, ठीक है। तो सत्य को सत्य कर लिया, अब विस्तार को साधन समेट लिया, पहाड़ जैसी समस्या कुछ भी घर में हो, कहीं भी कुछ हो, समेट के विस्तार विस्तार में ले लिया, और मन बुद्धि को समेट के बाबा में लगा दिया, सारा इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया, ठीक है। टोटल शेयर कहां कर दिए, सारा शेयर से पैसा निकाल के कहां लगा दिया, बाबा के पास, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे मेरा वहां लगा, अब ये देह नीचे खींचने लगती है ना, नीचे वाले टांग खींचने लगते हैं, नीचे वाले ना देह की बीमारियां खींचने लगती हैं, देह के स्वभाव संस्कार खींचने लगते हैं, और कुछ और घर वाले खींचने लगते हैं, है ना, अलौकिक में भी खींचना शुरू कर देते हैं, अब सहन करने की शक्ति आ गई, ऊपर से कनेक्ट हो गए ना, अब सहन करने की शक्ति आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आई तो सामना करने की, समा लिया, समाया नहीं तो सामना नहीं कर सकते, फिर वो कुछ भी प्रॉब्लम आए, आ जाओ पहलवान करता ना ऐसा, आ जाओ इकट्ठे कोई बात नहीं, एक एक इकट्ठे भी आ जाओ, कोई अड़चन तो सामना करने शक्ति, और फिर दूसरा कोई मांगे सहयोग तो सहयोग भी करने, ये आठों शक्तियां ऐसी आती, अब जैसे जैसे आठों शक्तियां आती जा रही है तो क्या हो गया, अब हमारी स्थिति कैसी हो गई, अब ये इसको बोलते हैं अश्री स्थिति है। तो पहले देही मानी स्थिति आई, फिर 63 जन्मों के पाप कटते जाएंगे, जैसे 63 जन्मों के पाप कट, अब पाप कट गए ना जिस दिन, उस दिन क्या आ गई, अश्री स्थिति आ गई, ठीक है, क्या स्थिति आ गई, तो अश्री, अब बार बार ये रियलाइज करना कि मैं अश्री आत्मा हूं, मैं अश्री आई थी, मैं अश्री बन के ही जाना है, अश्री बनने से ही हम विक्रमाजीत बनेंगे, मतलब विक्रमाजीत मतलब इस स्थिति को याद रखेंगे, मेरी स्थिति ये है, तो हम अश्री मतलब देह के बिना मैं आत्मा अलग, और ये मुझे निर्वाण जाना है, वाणी से परे जाना है, साइलेंस में, साइलेंस माना ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता, शांति, रूहानी प्यार, सबको माफ कर देना, सबको स्वीकार करना, फिर बाबा के गोद में, फिर बाबा के समा जाना, और फिर शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, जो राई का पहाड़ बनाता है वो कभी समेट नहीं सकता बुद्धि को, जो समेट नहीं सकता वो सहन नहीं कर सकता, जो सहन नहीं कर सकता वो समा नहीं सकता, जो समा नहीं सकता वो सामना नहीं कर सकता, और जो सामना नहीं कर सकता वो अपने में फंसा हुआ है, वो सहयोग क्या करेगा, है ना, उल्टा देखे तो इस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती जाती तो हमारी अश्री स्थिति बनती जाती, और जब अश्री स्थिति बनती तो फिर हम जब 63 जन्म पूरे हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो हमारी त्रेता की स्थिति आ गई, अब विकार नहीं है, अब आत्मिक स्थिति आ गई, टोटल चलते फिरते उठते बैठते कौन सी स्थिति आ गई, अब मुझे अभ्यास नहीं करना, मैं आत्मा हूं, अब मेरी फरिश्ता स्थिति आ गई, कौन सी स्थिति आ गई, विकर्माजीत फरिश्ता स्थिति आ गई, है ना, कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्माजीत, अब ये स्थिति आ गई, अब ये जब स्थिति आ गई विकर्माजीत वाली फरिश्ता स्थिति आ गई, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सेवा करना शुरू करता हूं, बेहद की सेवा, अभी हम सिर्फ 1% सेवा किया है, अभी जो हम ज्ञान सुनाते हैं, भाषण करते हैं, इधर जाके उधर जाके सभाओं में कॉन्फ्रेंस में जाके भाषण, ये कितनी सेवा है, 1%, ठीक है, क्योंकि अभी कितने ब्रह्मा कुमारी विश्व में 750 करोड़ आत्माएं हैं, कितनों की सेवा कर ली हमने, अपने शहर में कितनों की सेवा कर ली होगी, 1% की सेवा कर ली, 1% को मैसेज मिला है क्या, नहीं मिला, अभी 1% जानते नहीं लोग, 1% बाकी 99% जानते ही नहीं है, तो हमने लोगों को वैसे नाम पता ब्रह्मा कुमारी का, पर वो हमारे हमारे इससे विज्ञान से इस ज्ञान ज्ञान से बाबा के ज्ञान से परिचित हो जाए, नहीं परिचित है अभी, है ना। तो अभी इतना इतनी बहुत वॉइड बाकी है ना। आज 700 करोड़ हो गए, 7 करोड़ भी पीस ऑफ माइंड नहीं देखते हैं ना, है ना। तो 7 करोड़ देखते तब तो बनेंगे 1% ना, तो बस इसको ब्रह्मा कुमारी के बारे में इंटरेस्ट हो जाता कम है ना। तो अभी जो है हमको अब 99% जो मनसा सेवा के द्वारा होगा, अब वो फरिश्ता स्थिति के द्वारा होगा। जब हम ऐसी स्थिति अश्वरी स्थिति में पहुंचेंगे तब उसके द्वारा सेवा होगी, तब उनकी मन बुद्धि को टच होगा। जब मैं संपूर्ण पवित्र बनूं तब मेरे चेहरे और चलन से सेवा होगी। तो ये अश्वरी स्थिति होगी। जब अश्वरी स्थिति से हम आगे आगे बढ़ेंगे फिर हमारी जब जब हम त्रेता की स्टेज क्रॉस कर लेंगे तो विधेयी स्थिति आएगी। विधेयी माना तब हमारी विधेयी स्थिति आएगी। विधेयी स्थिति माना हम लोग देह में रहते विधेयी रहेंगे, वो हमारी होगी हमारी कर्मातीत स्थिति। कौन सी स्थिति होगी? कर्मातीत स्थिति। कर्म का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। हम अपने कर्म से सबको न्यारा प्यारा होकर के सबको बाबा की गोद में बैठ के वहीं से सबको साक्षात्कार होता रहेगा। या कोई कहीं पे भी होगा, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरे भगत होंगे उनको अपने आप ही उस टाइम भक्तों का रोल होगा, तो हमारे इष्ट देव का उनको साक्षात्कार होता रहेगा। कहीं दबे होंगे लोग, विनाश हो रहा होगा और दबे हुए होंगे लोग, तो उनको साक्षात्कार होगा। मेरे मेरे देवता आए, मेरे इष्ट देव आए, मुझे मुक्ति दे दी, जीवन मुक्ति दे दी, ऐसे ऐसा फील होगा। तो इस तरह से क्या होगा? देही मान स्थिति, फिर आत्मान स्थिति। कभी आत्मान स्थिति कब? जब ये सातों गुणों को आत्मा बढ़ती जाए, सतो प्रधान जैसे जैसे आत्मा बनती जाएगी तो फिर क्या? आत्मान स्थिति बढ़ती जाएगी। जब आत्मान स्थिति बढ़ती जाएगी, जब कंप्लीट सतो स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो फिर बन जाएगी हमारी अश्वरी स्थिति। और जब सतो प्रधान स्टेज को पहुंचेंगे फिर बन जाएंगे विधेही, कर्मातीत बन जाएंगे, ठीक है। कर्मातीत बनेंगे जब हमारी सतो प्रधान स्थिति पहुंचेगी। तो इस तरह से हमारी ये जर्नी जो है, पहले कर्मेंद्रिय जीत, फिर माया जीत, फिर प्रकृति जीत, और उसके बाद विकर्मा जीत, और उसके बाद कर्मातीत। दूसरी तरह से कहें तो देही मानी स्थिति, फिर आत्मानी स्थिति, और फिर अश्री स्थिति, और फिर विदेही स्थिति। जैसे ही जैसे रिटर्न जर्नी में जैसे हमारी बीमारियां आई थी, जैसे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, बीमारियां खत्म होती जाएंगी, आत्मा पे एनर्जी आती जाएगी। ये हमारा कटारा गाड़ी ना, पहिए पंचर है, एक्सल भी खराब है ना, वो कार्बोरेटर भी खराब है, इंजन भी खराब, सब खराब है। ये ऊपर देखो यहाँ भी खराब है, कंप्यूटर भी खराब हो गया है, नहीं याद कुछ रहता नहीं है ना, याद है इस ऐसी स्थिति। पर इसके लिए क्या करने का? चार नियम, चार मर्यादाएं पक्की करने की। पहली बात, अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण हो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। सच्चा ब्राह्मण हो जो रोज क्लास में आके मुरली सुने, ठीक है, कभी भी मुरली मिस ना करे। धरती इधर से उधर हो जाए, भले भूकंप आ जाए, है ना, तो टूटे मकान पे बैठ के भी अमृत वेला करे, ठीक है। अपना ही मकान टूट जाए तो क्या करो? टूटे मकान पे बैठ के अमृत वेला करो। भूकंप आ जाए तो मकानों के ऊपर से चढ़ के क्लास में जाए, है ना। इतनी पक्की होना चाहिए स्थिति, है ना। घर में भले 1000 काम पड़े, काम पूरा करके घर कैसे भी करके क्लास में समय पर मुरली में पहुंचे, उसे बोलते सच्चा ब्राह्मण, है ना। और मुरली, और फिर सारा दिन मुरली का मनन चित्त, कर्मयोगी जीवन, सारा दिन मुरली पे अटेंशन, मनन चिंतन मंथन सिमरन करता रहे, और सोने के पहले पूरा पोता मेल बाबा को देवे। पोता मेल माना बाबा को लेटर लिखे, जो भी गलतियां हुई, अच्छा अच्छा बुरा जो भी किया, बाबा को बताओ, बाबा मैंने आज ऐसे किया, वहां मैंने उसको आंख दिखाई, मैंने उसको गुस्सा किया। शिव बाबा को दिल में बिठा के ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो कि मैं ब्रह्मा बाबा कैसे करते, मैंने क्या किया, क्योंकि उनसे हमारा कंपैरिजन करेंगे तब पता लगेगा। नहीं तो ऐसे देखोगे ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता, मैंने उसको आंख दिखाई, डांट लगाई, करना था ना, करना ही पड़ता ना, काम नहीं, पेशेंट देख रहा था ढंग से, वो गलत कर रहा था इलाज, वो तो पेशेंट को मार देता है ना, तो ठीक किया ना मैंने। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता बनकर चेक करूं तो क्या है, सब कुछ गलती की ही नहीं मैंने, क्योंकि तो अपने को आत्म शिव बाबा को दिल में बिठा के ब्रह्मा बाबा से कंपेरिजन करो तो दिखाई देगा, हाँ ये मैंने गलती की, ठीक है। तो फिर लिखो, बाबा ये मुझसे गलती हुई, बाबा मुझसे गलती हुई, साईं अच्छी बात भी लिखो, बाबा मैंने देखो यहां पक्का किया आपने, आपको अच्छी गलती, मेरे को मन में आ रहा था ऐसे करूं, मैंने नहीं किया, मेरे को दिल में आ रहा था मैं इसको ऐसे कहूं, मैंने नहीं किया, ये अच्छी विक्ट्री पॉजिटिव हुआ ना, तो वो भी लिखो, बाबा मैंने आज ऐसे किया। फिर साइन करके बाबा को दे दो, ट्रिपल जीरो पे फैक्स कर दो, मैं आत्मा जीरो, मेरा बाप जीरो, आसारद में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय जीरो, वो फैक्स हो गया लेटर। उसके बाद चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, कितने घंटे, हर घंटे का चार्ट होना चाहिए याद का, एक घंटे में कितने मिनट बाबा को याद किया है ना, फिर वो लिखो, टोटल टोटल करो कितने मिनट हुआ, 240 मिनट हुआ, 200 मिनट हुआ, 480 मिनट तक होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मुरली पढ़ो, पूरी मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सो जाओ, और 9:30 तक सो जाओ, क्योंकि 9:30 से 3:30 सोना जरूरी है, 6 घंटा ब्राह्मणों को 6 घंटा नींद करनी चाहिए, जब फरिश्ता बन जाएंगे तो 4 घंटा, ठीक, अभी 6 घंटा है ना, नहीं तो फिर दिन में सोओगे, अमृत वेला फिर नींद आएगी, ठीक है ना, मुरली में सोओगे, तो इसलिए 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा जरूर सो जाओ, इससे कम नहीं सो ना, और लेटर लिख के सोगे, चार्ट भर के मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सोगे, तो फिर अच्छी नींद आएगी, फिर पवित्रता है ना, जितनी अधिक पवित्रता बढ़ेगी उतना अधिक अच्छा कनेक्शन लगेगा, ये चार परहेज है पवित्रता, जितनी गहराई से पवित्रता होगी उतना बाबा से अच्छा कनेक्शन लगेगा। फिर दूसरी सत्संग, सॉरी शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मतलब शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, और सात्विक सात गुणों को बढ़ाने वाला, रास्ते कौन सा वाला, पराठा पकौड़ा समोसा पिज्जा बर्गर ये सब क्या है, रास्तिक भोजन, इससे क्या आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, आप सोचो पराठा खाके पकोड़े खाके पूरी हलवा खाके हम योग लगाएंगे, योग लगेगा नहीं ना, यहीं बैठ के सो जाओगे, ठीक है। तामसिक भोजन कौन सा होता है, जो तो लहसुन प्याज सब जानते हो, नॉनवेज नॉनवेज जानते हो, अचार खाके, बहुत सारी लाल मिर्चे खाके, बहुत सारे गर्म मसाले खाके, बहुत सारी चाय कॉफी पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के सोचो मैं योग लगाऊं, नहीं लगेगा, उत्तेजना होगी, इरिटेशन होगी, आप बैठ ही नहीं पाओगे योग में, मन इधर जाएगा, बुद्धि उधर जाएगी, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, ठीक है। इससे अटेंशन रखो कि हमें सात्विक भोजन लेना, ठीक है। फिर सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, कोई और चीज का संग मत करना, रामदेव का संग नहीं करना है ना, कई लोग रामदेव का बहुत संग करते हैं, कोई कोई किसी का संग करता है, कोई प्राणायाम भी करता है, कोई बाबा के बच्चे प्राणायाम भी करते हैं, वो भी प्राणायाम, बाबा के बच्चे कभी प्राणायाम नहीं करते, ठीक है, राइट। राजू की कभी हठयोगी नहीं बनते, शरीर के लिए भी नहीं करो, शरीर को कई लोग कहते हैं हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, हठयोग करने से क्रोध बढ़ता है, ठीक है, इस पर रिसर्च हुई है, प्राणायाम करने से क्रोध बढ़ता है, कई बाबा के बच्चे कितने लोग करते हैं, हाथ उठाओ, ऊंचा तो शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, क्रोध बढ़ता है इससे, रिसर्च हुई है, ठीक है, क्योंकि हठ से करते हो ना, श्वास एक नेचुरल प्रक्रिया है, जितनी अधिक शांति होगी उतना अपने अपने आप श्वास गहरा जाएगा, और बाबा की याद में सैर करो, कुछ भी नहीं, आपकी सारी बीमारी गायब होगी, सारी बीमारियां विकर्मों के कारण होती है ना, कई लोग मुद्रा लगा के बैठते हैं ऐसे करके, पता नहीं कौन सी मुद्रा लगाते हैं वो ना, ऐसे करके बैठते हैं, अब मान लो ऐसे करके आपने बाबा को याद किया, तो जब ऐसे नहीं किया तो बाबा याद ही नहीं आएगा ना। अच्छा मुझे बताओ, रोटी बनानी है तो ऐसे ऐसे करके बनाओगे क्या, ऐसे ऐसे करके, गाड़ी चलानी है तो ऐसे ऐसे करके चलाओगे, दाढ़ी बनानी हो तो ऐसे ऐसे करके दाढ़ी बनाओगे, चलते फुरते उठते बैठते श्वासो श्वास बाबा को याद करना, इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगाओ इसके लिए, मैं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं, आलती पालती मार के बैठूं, कैसे जैसे बैठे है ना, कुछ भी करे, किसी भी मोड में हो, किसी भी पोज में हो, यो याद करने का प्रयास करो। अभी कोई कंडीशन डाल दोगे तो अंत में प्रॉब्लम, ये द्वापर युग के देवताओं को करना है ना, द्वापर युग में भी देवता आएंगे है ना, देवता माना भगत आएंगे, उनके लिए कार्य है ये कार्य करना, जिनको द्वापर युग में आना हो उसमें मुद्रा योग शुरू होगा, उसमें हठ योग शुरू होगा, उसमें आप करना, सीधे द्वापर में जिनको जाना है वो कर सकते हैं है ना, सीधा ही द्वापर में छलांग लगानी है ना 25 साल की, वो भले करें, किंतु जो सत्युग में आना चाहते हैं वो बाबा की श्रीमत नहीं है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं तो बाबा से कितनी बार मिला हूं, कितनी बड़ी बहनों के लिए, दादियों के लिए बाबा से मिलते हैं ना हम लोग, बाबा इस बहन को बीमार है, बहन की इसको ऐसे तकलीफ है, दादी को ये तकलीफ है, दादी क्या बाबा क्या करें, बाबा कहेगा बच्चे वो बच्चे को ये कर्म भोग है, इस बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर दिखाओ है ना, और उसको ये याद का अभ्यास और उसको अटेंशन देवे, तो बाबा हमेशा कहता है अल्लापैथी और एलोपैथी है ना, अल्लापैथी करो और क्या करो, एलोपैथी करो ना, बाबा ने कभी नहीं कहा नेचुरोपैथी करो, बाबा ने कभी नहीं कहा ये मैग्नेट थेरेपी, बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने कहा कभी नहीं कहा प्राणायाम करो, बाबा ने कभी इन बातों के लिए नहीं कहा, बाबा ने कहा सिर्फ अल्लापैथी करो और क्या करो, मतलब डॉक्टर को दिखाओ एंड डॉक्टर से इलाज करो, ठीक है। बाबा इसलिए हमेशा ये बाबा की सत्संग माना ये है, सत्य का संग, एक बाबा और बाबा के मुरली का संग, और किसी बात में मत जाओ, खरी एलोपैथी की बात नहीं, बड़े आयुर्वेद भी कर सकते हो ना, होम्योपैथी भी कर सकते, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ बाकी, मतलब मैं तो खैर क्योंकि एलोपैथी से मैं बिलोंग करते थे, मैं एलोपैथी बोल दिया, मतलब अल्लोपैथी कोई पैथी करो साथ में दवाई लो, किंतु बाकी दूसरे सब सिस्टम में मत जाओ, है ना। कलर थेरेपी वगैरह मत करो, शिव बाबा की लाइट में कोई कलर नहीं होता है, शिव बाबा में कलर नहीं है तो शिव बाबा की लाइट में कहां से कलर आएगा, है ना। तो ये तो सूरज की लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक, ये बाबा की कभी बाबा ने कभी नहीं सिखाया। तो इसलिए सत्संग माना जैसे बाबा से सुनो, बाबा ने जो कहा वो करो और कुछ मत करो, किसी देहधारी का मत देहधारी से ना सुनो ना करो, और मुरली का मनन चिंतन मंथन से मनन करो, ठीक है। एक बाबा और मुरली सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। दीदी ठीक बात है, सत्यवती सत्यवती मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं ठीक बात है। दो ही चीज सत्य है ना, बाबा और बाबा की मुरली सत्य है, बाकी सब कुछ जो भी देहधारी कहते हैं असत्य है ना। बाकी बाबा और बाबा की मुरली सुनो, उसमें अपनी तरह से जोड़ो मत, है ना। जोड़ोगे तो क्या होगा, मिक्सोपैथी तो हम करते हैं द्वापरयुग से, अभी भी मिक्सोपैथी हो जाएगी, ठीक है, राइट। समझ में आई कि ऊपर से गई बात, क्योंकि मैंने सब चीजों का मैं सुना है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, सब तरह के जो मिक्सचर करते हैं, ब्लॉकेज खुलते ही नहीं है, जो सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा को पकड़ के चलते हैं दिल में, दिल से शिव बाबा को बिठाते हैं, ना रामदेव को बिठाते हैं, ना श्यामदेव को बिठाते हैं, ना किसी और देव को बिठाते हैं, ना सिर्फ परमात्मा को बिठाते हैं, उनके ब्लॉकेज खुल जाते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी नहीं करते बुद्धि में, एक बाबा के अलावा कुछ रखते नहीं, कमरा खाली चाहिए बाबा को पूरा, बाबा को कहो बाबा तुम इसमें रामदेव बैठा, थोड़ा इधर को, थोड़ा तुम भी इधर आके बैठ जाओ। बाबा कहता नहीं भैया मैं नहीं आता तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल गंदा है ना, ठीक है। सुना आपने, ये कड़वी बात जरूर है, थोड़ी सी ध्यान रखना, पर बाबा मेरा बेटा बहुत मुझे प्यारा है, इधर को यहाँ बैठा दे, कोने में इसको बैठा दे, आप यहाँ आ जाओ, सेंटर में आप आ जाओ। बाबा कहते मैं नहीं आता, ठीक है। और चौथा दैवी गुणों की धारणा, कभी भी गुस्सा आए गुस्सा मत करना, एक बार गुस्सा आए 3 दिन तक स्थिति खराब रहेगी, 3 दिन योग लगेगा नहीं। एक बार उदासी आए कभी उदास मत होना, तो भी मुस्कुराते ही रहना। हमारे यहाँ मसल्स होती हैं, ये हर चीज की मसल, मुस्कुराने की मसल्स होती हैं, उदास होने की मसल्स होती हैं, गुस्सा करने की मसल्स होती हैं, और मुंह बनाने की मसल्स होती हैं, ना। आप जो भी काम करते हो वही मसल ताकतवर बन जाती हैं, दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। उदास होने की आदत डाल लो, आप मुस्कुराओगे तो भी उदासी दिखाई देगा, और जब मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, आप उदास होगे ना तो भी ऐसे लगेगा मुस्कुरा रहा है ना, ठीक है। मसल्स पावरफुल हो जाएंगे ना, आप ऐसे बना के रखो हमेशा। ये तो शीशा खरीद लो, छोटे वाला शीशा आता है, गोल गोल शीशा आता है, 5 रुपए का मिलता है शांतिवन के सामने से, ना जेब में रखो, 15 मिनट निकाल के देखते रहो और मुस्कुरा के फिर जेब में रख लो, फिर निकालो, फिर जेब में से निकाल के, है ना, 15 मिनट देखते रहो, तो आपकी मसल्स पावरफुल हो जाएंगे। फिर सत्युग में तो मुस्कुराना पड़ेगा ना, नहीं तो दर्द हुआ करेगा, है ना, ठीक है ना। नेचुरल मुस्कुराना हो जाना चाहिए। अब ज्यादा मुस्कुराते हो ना अपने बिना बात पे तो ज्यादा दर्द हो जाता है, मसल्स में दर्द हो जाता है, क्योंकि कमजोर मसल है ना, मुस्कुराने की आदत ही नहीं है, तो मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी, फिर सत्युग में बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अशरीर स्थिति बनती जाएगी, तो ऑटोमेटिक इसमें याद समाई है, इसी में विक्रमाजीत स्थिति समाई है, इसी में कर्मातीत स्थिति समाई है, इसी में क्या समय है, सत्व प्रधानता समाई है, इसी में फरिश्ता स्थिति समाई है, इसी में बीज रूप स्थिति समाई है, ठीक है। ओम शांति।
तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। आती नजर है अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है ना ही फिकर है साथ में तेरे जब हाथ है
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का, बहुत सुंदर साइंटिफिक तरीका बताया शरीर स्थिति बनाने का, बहुत पावरफुल क्लास हमको कराई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांतिवन से खास हमारे लिए ऊपर आए हैं क्लास कराने, थैंक यू।